थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
हम सबका है तू ही सितारा, सबका है तू ही सितारा। परम पिता ने है तुझको भेजा, हम सबका है तू ही सितारा। परम पिता ने है तुझको पिता इन्हें माफ करना। समझ है ये लोग सारे ये न जाने ये क्या कर रहे हैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे थे कि चार घुड़सवारों के दंड के कारण परमेश्वर का उद्देश्य ही पूरा होगा और महाक्लेश के युग में भी असंख्य जन उद्धार पाएंगे, परंतु असंख्य जन ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हम सबों को फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ हम कर सकते हैं। इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हरेक प्रकार की त्रुटियों को, खामियों को, पापों को उनके जीवन से दूर करने पाए। पिताजी, आप प्रत्येक को अपने शांति, अपना आनंद प्रदान करें, इस अध्ययन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 7 में आगे जाएंगे। इस अध्याय में हम हर एक छोटी छोटी बात की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, विशेष करके मैं, मुझे, अपने आप ही पर झुंझलाहट होती है। कहने का अर्थ है कि हर एक बात को हम नहीं दर्शा पाएंगे कि मैं आज के भविष्यवाणी के शिक्षकों के बराबर ज्ञान नहीं रखता हूं, यह सोचकर मुझे भी झुंझलाहट होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका परमेश्वर से सीधा संबंध है। वे तो प्रभु यीशु के आगमन की तिथि भी जानते हैं और बाइबल के कुछ अंशों का अति आश्चर्यजनक वर्णन भी करते हैं, जहां बाइबल कहती है कि उस हर्मगिदोन के युद्ध में लहू घोड़े की लगाम तक बहेगा तो वे आपको लहू का वर्ग भी बता सकते हैं। मुझे कुड़कुड़ाहट होती है कि मेरे पास ये सब जानकारियां क्यों नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं कि इस सब जानकारियों से लाभ भी क्या है। हमें सबसे पहले तो कलीसिया को यह समझना है कि हम महाक्लेश से बचाए गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। महाक्लेश दंड है और कलीसिया दंड की भागी नहीं है। उसने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से स्पष्ट कहा था कि वह उसे उस घड़ी से बचाएगा, अर्थात क्लेश से। कौन सी घड़ी से? जिसकी चर्चा यूहन्ना इस समय कर रहा है। हमें धर्मशास्त्र को ही कहने का अवसर देना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ध्यान दीजिए, लिखा है एक और स्वर्गदूत, यह पांचवां स्वर्गदूत है। यह स्वर्गदूत उन चारों स्वर्गदूतों से बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि वह उन्हें आदेश दे रहा है। दानियल की पुस्तक और इफिसुस की कलीसिया को लिखी पत्री से स्पष्ट होता है कि अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के अलग अलग वर्ग हैं। शैतान की दुष्ट आत्माएं अति उचित रूप से संगठित हैं। उसके पास सेनापति है, नायक है, सैनिक हैं और अनेक भाड़े के कार्यकर्ता भी हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की भी उचित व्यवस्था है। यह स्वर्गदूत अन्य स्वर्गदूतों को आदेश देता है। लिखा है ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, यूनानी भाषा का शाब्दिक हिंदी अनुवाद होगा चिंघाड़ भोंपू। कहने का अर्थ है जोर से आवाज दिया। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर भयानक दंड आने वाला है, अतः आवश्यक है कि परमेश्वर के सेवकों को सुरक्षित किया जाए। यदि वह उन पर मुहर नहीं लगाएगा तो वे बच नहीं पाएंगे। वे इस पृथ्वी पर पड़ने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 और 22 पद में प्रभु यीशु स्वयं इस बात को कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मेरे प्रियो, जिन पर मुहर लगी होगी उनके कारण महाक्लेश का समय घटाया जाएगा। उनके मत्थों पर क्या चिन्ह अंकित किया गया है? इसका उत्तर मैं नहीं जानता हूं, परंतु आप किसी से कहना मत। मैं केवल सुझाव दे सकता हूं। कुछ लोग जानते हैं कि यह चिन्ह क्या है, परंतु कोई भी दो मनुष्यों का अनुमान परस्पर मेल नहीं खाता है। मेरे विचार में तो उन सब का अनुमान गलत है क्योंकि बाइबल में इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, और मेरे विचार में कलीसिया को इस चिन्ह के बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बस इतना ही बताया गया है कि उन पर चिन्ह लगाया जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि ख्रिस्त विरोधी के राज में जिन पर पशु का चिन्ह नहीं होगा वे बाजार में लेन देन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का यह चिन्ह पशु के चिन्ह के विरोध में होगा। मेरे विचार में यह उनके जीवन में आत्मिक चिन्ह होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु कहता है कि वे अपने फलों से पहचाने जाएंगे। जी हां, उनका जीवन प्रकट करेगा कि वे परमेश्वर के हैं या शैतान के। मेरा मानना है कि यह परमेश्वर के अपनों की पहचान होगी, क्योंकि उस युग में अभक्त जन अपनी चरम सीमा पर होंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि उस युग में आज से अधिक अभक्त जन कैसे होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वे आज से कहीं अधिक आगे होंगे। सातवीं मुहर के खोले जाने से पूर्व हमारे पास यह मध्यकालीन वार्ता है। यह स्वर्गदूत सेनापति सा लगता है क्योंकि वह आदेश देता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। मेरे प्रियो, मुहर लगवाने वालों के दो अलग अलग दल होंगे, एक इसराइल में से और दूसरा अन्य जातियों में से। अब कलीसिया कहां है? वे यहां नहीं है और मेरे विचार में वे नए यरूशलेम में हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वह अपनों के लिए जगह बनाने के लिए जाता है, और जब उसने उनको यहां से निकाल लिया है तो वे उसके साथ हैं। प्रकाशित वाक्य में आगे चलकर नया यरूशलेम पृथ्वी पर उतरेगा और हम उसे देखेंगे। अतः छठवीं और सातवीं मुहर खुलने के मध्य की ये बातें इसलिए हैं कि ये लोग जिन पर मुहर लगाएंगे, अर्थात जिन पर यह मुहर लगाई गई है, वे महाक्लेश में सुरक्षित रहें। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि वे महाक्लेश में सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं इसराइल के शेष जनों पर मुहर लगाई गई। जब परमेश्वर इसराइल के साथ व्यवहार करता है, तब मैंने देखा है कि वह तिथि बताता है और संख्या भी बताता है, परंतु कलीसिया के साथ व्यवहार करते समय वह न तो तिथि बताता है और न ही आंकड़े व्यक्त करता है। पौलुस ने उधार पाने वालों की संख्या कभी किसी को नहीं बताई। महाक्लेश में उधार पाने वाले अन्य जाति मनुष्यों की भी संख्या नहीं बताई गई है, परंतु इसराइल के संबंध में वह आंकड़े भी गिनवाता है तथा तिथि भी बताता है। कुछ बाइबल शिक्षक तिथि निर्धारित करके भविष्यवाणी के अध्ययन को हानि पहुंचाते हैं और भविष्यवाणी का स्तर गिरा देते हैं, जबकि भविष्यवाणी का यह पक्ष अन्य किसी भी भविष्यवाणी के विषय के समान ही ऊंचे स्तर का होना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मुहर दी गई। ध्यान दीजिए, इसराइल की प्रजा में से 144,000 पर मुहर लगाई गई, परंतु हम देखेंगे कि अन्य जातियों की संख्या अनगिनत है। मेरे विचार में सब प्रचारक आपको अपनी सभाओं में उद्धार पाने वालों के आंकड़े बता सकते हैं, कुछ तो सत्य से बढ़कर आंकड़े बताते हैं, परंतु इस समुदाय को गिनना असंभव है। अंततः महाक्लेश में एक विशाल समुदाय उद्धार पाएगा, और यह कैसे होगा? उन पर मुहर लगाई जाएगी। पवित्र आत्मा उन्हें नया जन्म देने के लिए ही नहीं, उन पर मुहर लगाने के लिए भी यहां कार्य करेगा। मुहर लगाना उसकी विशेष सेवा होगी। जी हां, मुहर इस सत्य का आश्वासन है कि वे बचाए जाएंगे। आपके पत्र पर डाकघर की मुहर लगाने का अर्थ है कि आपके पत्र का अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना निश्चित है। देर हो सकती है, परंतु पत्र अवश्य पहुंचेगा। मुहर लगाने का अर्थ भी यही है। पवित्र आत्मा सुनिश्चित करता है कि वे महाक्लेश में सुरक्षित रहें। यदि उन पर मुहर न लगी हो तो वे महाक्लेश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो मैं आज सुरक्षित नहीं रह सकता हूं, यदि पवित्र आत्मा कार्य ना करे तो। मुझे संदेह है कि हमें अपनी दुर्बलता का बोध है। मैं तो सूर्यास्त से पहले ही उसका इनकार कर दूंगा। यदि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझ में काम ना करे, हम सब में परमेश्वर से विद्रोह करने का स्वभाव है। यहां पर हम देख रहे हैं 144,000 मनुष्यों का यह समुदाय स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ऐसे पंथ भी हुए हैं जिन्होंने अपने सदस्यता को 144,000 करके सुरक्षित समुदाय की तुलना में अपने आप को दे दिया है, परंतु अंततः उनकी संख्या बढ़ गई। सच तो यह है कि जब उन्होंने आरंभ किया था तब वे अधिक आशावादी नहीं थे। उनका कहना था कि वे इसे ज्यों का त्यों मानते हैं, परंतु समस्या तो तब हुई जब उनकी सदस्यता अधिक हो गई। उन्हें 144,000 पर ही अपना कारोबार बंद कर देना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अतः इस बात को स्मरण रखें कि यह संख्या न तो कलीसिया की है और न ही किसी समुदाय विशेष की है जो आज उपस्थित हैं। ये 144,000 प्रत्येक इसराइली गोत्र से हैं। अतः यदि आप इनमें अपने को रखना चाहते हैं तो आपको अपना गोत्र जानना होगा, क्योंकि इसराइल के गोत्रों की पहचान देखी जाएगी। यह अति स्पष्ट है कि परमेश्वर उद्धार प्राप्त अपने बचे हुओं को अलग करेगा। आपको यह संख्या बहुत बड़ी लगती है, परंतु यह वास्तव में है बहुत छोटी। आज संसार में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी हैं। इस संख्या की तुलना में आप देख सकते हैं कि शेष इसराइलियों की संख्या कितनी कम है। कुछ लोगों का कहना है कि यह अंक किसी और संख्या का प्रतीक है। क्या परमेश्वर जो चाहता है वह कह नहीं सकता? क्या परमेश्वर को गिनती करना नहीं आता है? उसे गिनना आता है। जी हाँ, यदि वह कहता है 144,000 तो उसके कहने का अर्थ है 144,000, न कि 145,000। इसलिए यहां पर लिखा है इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से। ध्यान दीजिए, अब्राहम के बुलाए जाने के समय ही से परमेश्वर का निष्ठावान एक छोटा समूह सदैव रहा है। आज भी परमेश्वर का एक छोटा भक्त समुदाय है। मैं अनेक मसीह के विश्वासी यहूदियों को जानता हूं जो बहुत ही अच्छे मसीही जन हैं। उनमें एक समुदाय है जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। उनकी संख्या बहुत नहीं है, परंतु अन्य जातियों में भी विश्वासियों की संख्या अधिक नहीं है। मेरे विचार में अल्पसंख्यक समुदाय वास्तव में वही हैं जो प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी हैं। रोमियों के पत्र 9 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहता है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। यह अति सत्य है। और रोमियों के पत्र 11 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। पौलुस का कहना था कि उसके समय भी कलीसिया में चुने हुए लोगों का समुदाय था। आज भी कलीसिया में एक छोटा समूह है। महाक्लेश के समय जो इसराइली समूह बचेगा उनकी संख्या 144,000 होगी। मेरे मित्रों, ये लोग महाक्लेश के समय प्रभु यीशु के गवाह होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 14 पद में इसी समय के संदर्भ में प्रभु यीशु कहते हैं, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब कोई यह कहे कि राज्य का सुसमाचार एक अलग सुसमाचार है तो निश्चय ही ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास इस एक मार्ग के अतिरिक्त पापों के उद्धार का दूसरा मार्ग नहीं है, और यह है प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा। यदि आप हाबिल से पूछते, हाबिल यह मेमना क्या तेरा उद्धार करेगा, तो वह कहता, नहीं, यह मेमना उस आने वाले का प्रतीक है जिसकी परमेश्वर ने मेरी माता से प्रतिज्ञा की थी कि वह एक स्त्री से जन्म लेगा और जगत का उद्धार करता होगा। यह मेमना उसका प्रतीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का सुसमाचार है। इससे इसराइल जागरूक होगा। और अनेक जन प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। ये लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे और एक बात कहेंगे जिसे कहने का अधिकार हमें नहीं है। वे कहेंगे तब अंत होगा। दूसरे शब्दों में प्रभु के आगमन में देर नहीं होगी। हमें अधिकार नहीं कि हम कहें मसीह शीघ्र आएगा, क्योंकि हम उसके आने का दिन और घड़ी नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, आज हम में से हर एक को तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत निकट है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके वचन को सुनकर अपने मनों को फिराएं, ताकि वे बचाए जाएं। मेरे श्रोता मित्रों, यदि आप परमेश्वर के वचन को इस समय सुन रहे हैं और आप अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, ये समय आपके लिए है कि आप अपने जीवन पर विचार करें। यदि आपके जीवन पापमय है तो आप निराश ना हो, प्रभु की ओर आए, उसके निकटता में आए, अपने पापों का प्रायश्चित करें, उससे कहें कि प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे जीवन में पाप हैं, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आए, मुझे छुटकारा दें। मेरे प्रियो, निश्चय जाने कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और वह आपको नया जीवन देगा। इसलिए आप आज निर्णय लें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आपने अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। शुक्रगुजारी से मैं।